पृष्ठ संख्या 150, अध्याय 13। बरामदे के दाईं ओर एक के बाद एक चार कमरे थे जिनमें मानसिक रोगों के डॉक्टर बैठते थे, और सबसे आखिर के कमरे में डायरेक्टर बैठता था। इसी अस्पताल के पीछे वह इमारत थी जहां मानसिक विकारों वाले मरीजों को रखा जाता था। बरामदे में सभी कमरों के सामने लोगों की लाइनें लगी थीं, जो कभी उठकर लाइन में खड़े हो जाते तो कभी थककर बेंचों पर जा बैठते थे, जो बरामदे की दोनों दीवारों के साथ लगे थे। बरामदे में दाखिल होते ही दाएं हाथ एक खिड़की थी जिसके सामने बहुत से आदमियों की भीड़ जमा थी। डॉक्टरी नुस्खे और अर्जियां हाथों में झुलाते लोग एक दूसरे पर पिल पड़ रहे थे। यहाँ मरीजों के नुस्खे दर्ज किए जाते थे और डॉक्टर या अस्पताल के किसी अन्य अधिकारी से मिल पाने की इजाज़त ली जाती थी। नाटा और महेंद्र आंगन पार कर बरामदे में आ गए थे। दोनों काले रंग के सूट पहनकर आए थे, शायद इस विचार से कि अस्पताल के अंदर जाने के लिए काला रंग ही ज्यादा मुनासिब रंग है। नाटा बार बार बच्चों की तरह रुक जाता था, और कभी किसी खिड़की के सामने तो कभी वतियाते किसी मरीज के सामने खड़ा हो जाता और उसकी बातें सुनने लगता। डायरेक्टर के कमरे के सामने भी एक छोटी सी लाइन लगी थी। यहाँ पर नाटा फिर ठिठक गया। अधेड़ उम्र का एक सरदार नाटे को डॉक्टर समझ बैठा था और उसकी आस्तीन पकड़कर उससे बार बार पूछ रहा था, क्यों डॉक्टर साहब, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, आप जरूर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, नाटे ने आश्वासन देते हुए कहा और अपनी आस्तीन छुड़ाने लगा। इस पर सरदार उठ खड़ा हुआ। पुलिस वाले कहते हैं मैं राह जाती लड़कियों को चुन्नी करवाता फिरता हूँ, उन्होंने मेरी पर्ची पर भी लिख दिया है कि यह लड़कियों को चुन्नी करवाता है। पृष्ठ संख्या 151। कहते हुए सरदार ने रहस्य भरे लहजे में उसके कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, घर की लड़की तो चुन्नी करती नहीं, बाहर की लड़की चुन्नी करेगी, सोचने वाली बात है, वह तो मुझे 100 जूते मारेगी और एक गिनेगी। इस बीच सरदार ने नाटे का कंधा छोड़कर हाथ पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से नाटे के हाथ को सहलाते हुए कहे जा रहा था, हमारे पिंडी पेशावर में कहते थे कि लड़की का सिर ढका होना चाहिए, चुन्नी में औरत की इज्जत होती है, क्यों डॉक्टर जी, मैं ठीक कहता हूँ, इंसाफ की बात है, डॉट डॉट। नाटा और महेंद्र को अपने पास खड़ा देखकर सरदार का चेहरा दमकने लगा। उसने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और चूसने वाली मिठाई की दो तीन गोलियां निकाल लाया। लो जी प्रसाद लो, गुरु महाराज ने कहा है निमाड़ा होकर रहना चाहिए, अपने को सबसे नीचा समझना चाहिए, सभी से निमाड़ा, मैं आपका दास हूँ। कहते कहते सरदार की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी पगड़ी के सिरे से अपने आंसू पोंछने लगा। नाटा और महेंद्र आगे बढ़ गए और डायरेक्टर के कमरे के सामने खड़े एक चपरासी को अपना कागज दिखाकर सीधे डायरेक्टर के कमरे में चले गए। डायरेक्टर का कमरा धूप से खिला था। एक चौड़े से मेज के पीछे डायरेक्टर चुस्त दुरुस्त हल्के नीले रंग का सूट पहने बैठा था। खिड़की में से आने वाली धूप उसके चिकने काले बालों पर पड़ रही थी। कमरे में लगता था हर चीज जैसे हौले हौले हिल रही है। मेज के दोनों सिरों पर गुलदानों में सजाए गए स्वीट पीज के फूल, खुली खिड़की के पास लटकता हुआ पर्दा, मेज पर रखे चौकोर कांच के टुकड़े में हिलता डायरेक्टर का अक्स, सभी हौले हौले हिल रहे थे। डायरेक्टर बड़ा सज्जन व्यक्ति जान पड़ता था। उसके दफ्तर के अंदर कितनी ही किताबें रखी थीं और चेहरा खिला हुआ। महेंद्र को वह लोग बहुत पसंद थे जिन्हें किताबों का शौक हो, उनके साथ हुआ बहुत जल्दी हिल मिल जाया करता था। मैं आपकी ही राह देख रहा था, खन्ना साहिब ने मुझे टेलीफोन पर बता दिया था, डायरेक्टर ने कहा। जब दोनों बैठ गए तो डायरेक्टर ने सिगरेटों की डिबिया उनकी ओर बढ़ा दी और नाटे की ओर देखकर बोला, प्रमिला देवी आपकी पत्नी है? नहीं, मेरे मित्र की पत्नी है, इनकी पत्नी, नाटे ने कहा। पृष्ठ संख्या 152। डायरेक्टर ने शिष्टता से सिर हिलाया, शिष्टता से ही राखदानी में सिगरेट को झाड़ दिया, फिर बोला, मैं आप लोगों को उनके पास नहीं ले जा सकूंगा, दूर से ही आप उन्हें देख सकेंगे। सनक वाली स्त्री के पास उसका पति पहुंच जाए तो उसकी मानसिक उत्तेजना बढ़ जाती है। दोनों चुप रहे। यह डॉक्टर ने मुझे बताया है कि उनकी हालत पहले से बेहतर है, यह वास्तव में पागलपन नहीं है, केवल एक प्रकार का दौरा है, किसी परेशानी या सदमे के कारण मन में गांठ सी पड़ जाती है और व्यक्ति पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। वक्त बीतने पर धीरे धीरे यह गांठ अपने आप खुलने लगती है। डायरेक्टर ने दोनों हाथों से उंगलियों को ऐसे हिलाया जैसे गांठ खोल रहा हो। नाटा महेंद्र को यहाँ खींच कर ले आया था। वह अभी भी उस पर दबाव डाल रहा था कि वह प्रमिला को वापस बुला ले और पहले की तरह अपनी गृहस्थी चलाए। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, मरीजों के कमरे पीछे की ओर हैं, डायरेक्टर ने कहा। और तीनों व्यक्ति बरामदे में निकल आए। बरामदा पार करते हुए उस सन के सरदार ने नाटे का कोट पकड़ लिया और फुसफुसा कर बोला, अगले 2 साल में दिल्ली शहर पर मुसीबत आएगी। सभी औरतें बेपर्द हो जाएंगी, सभी के सिर नंगे हो जाएंगे, सबको पाकिस्तानी उठाकर ले जाएंगे। मर्दों के बाएं हाथ को लकवा मार जाएगा, लोग कुत्तों की तरह बसों के नीचे आकर मरेंगे। लड़कियों के सिर नंगे होंगे, सबके सिर नंगे होंगे। एक लंबा गलियारा लांघ कर जिसके एक ओर खुला मैदान था और दूसरी ओर साज सामान की कोठरियां थी, वह लोग अस्पताल के पिछवाड़े में पहुंचे। सामने की ओर तारों की ऊंची बाड़ से पागलखाने के क्षेत्र को अस्पताल से अलग कर दिया गया था। गलियारे के सिरे पर पहुंचकर वह लोग बाएं हाथ को घूम गए। डायरेक्टर ने कदम धीमे कर दिए। बाएं हाथ बरामदे में खुलने वाला एक लंबा हाल कमरा था, जहां जगह जगह कुर्सियां और बेंच रखे थे। कमरे में तीन चार व्यक्ति इधर उधर डोल रहे थे, सभी मानसिक रोगों से पीड़ित थे। एक सिरे पर एक आदमी अलग थलग एक बेंच के पास छाती फुलाए खड़ा था और सामने की ओर देखे जा रहा था। नाटा ठिठक गया और अपने साथियों को छोड़ धीरे धीरे उस सनकी की ओर बढ़ने लगा। नाटे का रुकना देखकर डायरेक्टर और महेंद्र पृष्ठ संख्या 153 भी मुड़कर उसके पास आ गए। वह आदमी अभी भी सामने की ओर देखे जा रहा था। दुबला पतला 30-एक साल का आदमी रहा होगा, गोरा चिट्टा। इन तीन व्यक्तियों को अपनी ओर आता देखकर वह और भी तनकर खड़ा हो गया, अपनी तंग सी छाती को फुला लिया और दायां हाथ उठाकर अपनी मूछ सहलाने लगा। मेरा बयान कब लिया जाएगा? उस आदमी ने तीनों को संबोधित करते हुए कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा बयान कब लिखा जाएगा? हम जरूर आपका बयान लिखेंगे। आपने सचमुच बड़ी बहादुरी का काम किया है, बड़ा मर्दों वाला काम किया है। इस पर उस आदमी की छाती और भी फूल गई और वह मूछें ऐंठ कर बोला, हमने अपना फर्ज अदा किया है, हमने समाज में से गंदगी को साफ किया है। ऐसी औरत को जीने का कोई हक नहीं था। और फिर मूछों को ऐंठता हुआ टहलने लगा। यह आदमी जेल में से यहाँ भेजा गया है, अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में कैद भोग रहा है, डायरेक्टर ने फुसफुसा कर कहा। फिर मुस्कुरा कर बोला, अपने को बहुत बड़ा हीरो समझता है। नीम पागल उसी तरह छाती फुलाए टहलता हुआ लौट आया और बहुत बड़े नेता की तरह इन तीनों की ओर मुड़कर देखा। फिर मूछों को ऐंठता हुआ बेंच पर बैठ गया। लिखिए, मेरी पत्नी की एक आदमी से आशनाई थी, ऐसी औरत को मार डालना मेरा फर्ज था। वह औरत समाज को गंदा कर रही थी, हमने अपना फर्ज पूरा किया है। वह छाती फुलाए सामने वाली दीवार की ओर देखने लगा और थोड़ी देर बाद फिर उठकर टहलने लगा। धीरे धीरे चलता दाएं बाएं देखता हुआ वह सीधा दीवार तक चला गया। फिर वहां से लौटा और डायरेक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। उस सिनेमा के हीरो की सी मुद्रा में बोला, हमने उस औरत को रेलवे स्टेशन पर खत्म किया था, हमने उसे औरतों के डिब्बे में बैठाया, फिर हम उसके लिए नल पर से पानी लेने गए। हमने सीधा उसके पास जाकर लोटा उसके हाथ में दिया और उसी वक्त जेब में से कमानेदार चाकू निकालकर एक ही बार में चाकू उसकी पसलियों में घोंप दिया। पहले तो उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, फिर जब हमने चाकू खींच कर निकाला तो वह छटपटाई और चिल्लाने लगी। पापी आदमी मरने से पहले बहुत छटपटाता है, बहुत चिल्लाता है। और वह फिर मुड़कर टहलता हुआ दीवार की ओर जाने लगा। पृष्ठ संख्या 154। इस आदमी की माँ कभी कभी इससे मिलने आती है, डायरेक्टर फुसफुसा कर बोला। वही औरत जो आज गेट पर खड़ी थी और चौकीदार उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। वह देर तक बैठी इसे दुलारती रहती है और इसका दूसरा ब्याह करने की बातें करती रहती है। वह सचमुच चाहती है कि इसका ब्याह फिर से हो जाए और इसकी गृहस्थी फिर से बस जाए। उसके सामने यह आदमी बिल्कुल दुल्हों की तरह व्यवहार करने लगता है। नीम पागल नजदीक आ गया था और और पास आकर वह घूम जाने से पहले बोला, एक माफीनामा आएगा, ध्यान रखिएगा, हम उस पर गौर करेंगे, और कहकर फिर से घूम गया। उसके दूर निकल जाने पर डायरेक्टर फुसफुसाया, यह समझता है कि वह आदमी जिसके साथ इसकी पत्नी की आशनाई थी अपने खून से इसे माफीनामा लिखकर भेजेगा और यह उस पर गौर करेगा। अब की बार जब नीम पागल नज़दीक आया तो डायरेक्टर ने मुबारकबाद के स्वर में कहा, सुना है आपकी सगाई की बात पक्की हो गई है, बड़ी धूमधाम से ब्याह होगा जनाब का, बड़ा मुबारक दिन होगा। इस पर नीम पागल के चेहरे का तनाव कुछ ढीला पड़ गया, मुस्कुराहट की झलक दौड़ गई और वह सिर हिलाकर बोला, लड़की अच्छी है, सुना है सलीके वाली है, देखने में भी सुंदर है, पतली नाजुक सी। कहते हुए उसकी बाछें खिल गईं, फिर मुस्कुराहट समेटने की कोशिश करते हुए बोला, सुना है सुंदर है, अच्छी है, हम गौर करेंगे, और वह सिर हिलाते हुए फिर घूम गया। तीनों हाल के कमरे में से बाहर आ गए और फिर से लंबे बरामदे में जाने लगे। महेंद्र पहले की ही तरह गुमसुम चले जा रहा था, लेकिन नीम पागल के इस साक्षात ने उसे विचलित कर दिया था। कुछ दूर जाने पर आंगन की ओर खुलने वाली बरामदे की ऊंची ऊंची मेहराबों को तख्ते चढ़ाकर बंद कर दिया गया था। केवल जगह जगह उनमें छोटी छोटी खिड़कियां छोड़ दी गई थी। इन्हीं खिड़कियों में से एक खिड़की के पीछे डायरेक्टर खड़ा हो गया। खिड़की के पार लंबा चौड़ा आंगन था और आंगन के पीछे गहरे चॉकलेटी रंग की दो लंबी सी पृष्ठ संख्या 155 वैरके बनी थी। वहीं पर सनक वाली तथा पागल स्त्रियों को रखा गया था। जिस वक्त ये लोग पहुंचे, आंगन लगभग खाली था। उलझे हुए बालों वाली एक औरत मैली सी सलवार और कुर्ता पहने दुपट्टे की झोली सी बनाए इधर उधर घूम रही थी और जमीन पर से कागजों के टुकड़े, खपचियां, थिगलियां आदि चुन चुन कर अपनी झोली में डाल रही थी। महेंद्र और नाटे ने ध्यान से उसकी ओर देखा, वह प्रमिला नहीं थी। दूर बैरकों के पास खाकी कमीज और खाकी रंग की ही सलवार पहने हाथ में छोटा सा बेंत उठाए अस्पताल की एक स्थूल का जमादारन अपनी ड्यूटी पर इधर उधर टहल रही थी। दूर से कड़े स्वभाव की लग रही थी। दाईं ओर की वैरक के बाहर एक लंबी अलगनी पर एक औरत छोटी छोटी थिगलियां और कतरने टांग रही थी। अखबारों के कागज और खपचियां इकट्ठा करने वाली औरत चलती हुई खिड़की के पास आ गई थी। सांवले रंग की इस पगलाई औरत ने खिड़की के पीछे खड़े इन लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बालों की लटें उसके माथे पर गिर रही थीं। दुपट्टे में बनाई गई झोली में उसने पहले से ही बहुत सी खपचियां और मुचड़े हुए कागजों के टुकड़े जमा कर रखे थे। वह धीरे धीरे आंगन के दूसरी ओर बढ़ गई। वह रही आपकी पत्नी, सहसा डायरेक्टर ने कहा, प्रमिला ही थी। थिगलियां टांग चुकने के बाद वह अपना कुर्ता फाड़ने जा रही थी, शायद इस आशय से कि उसमें से छोटी छोटी टुकड़ियां काट कर उन्हें टाँकने लगेगी। जब जमादारन सहसा आगे बढ़ाई और लपक कर प्रमिला के दोनों हाथ पीठ पीछे से पकड़ लिए, इस पर डायरेक्टर मुस्कुरा कर बोला, इन्हें चमड़े का कुर्ता भी बनवा दो तो भी ये फाड़ डालेंगी। अलगनी पर जितनी थिगलियां टंगी हैं सभी इन लोगों के अपने कपड़े फाड़कर ही टांगी हैं। फिर दार्शनिक अंदाज में कहने लगा, सभी पागल औरतें अपने कपड़े फाड़ डालना चाहती हैं। कपड़े फाड़कर वह मन की घुटन से छुटकारा पाना चाहती हैं। कपड़े फाड़कर ये अपने को आजाद समझने लगती हैं, मानो कपड़े फाड़ने से ही इनके सब कष्ट कट गए। प्रमिला के दोनों बाजू पकड़े हुए जमादारन उसे अलगनी से दूर आंगन में रखे एक बेंच की ओर ले जाने लगी। प्रमिला की चाल धीमी थी और उसका शरीर पहले से कुछ ज्यादा गदराया हुआ था। अनायास ही प्रमिला को देखकर महेंद्र का दिल बेचैन सा हो उठा। इस वक्त प्रमिला उसे बड़ी निरीह और निस्सहाय नजर पृष्ठ संख्या 156 आई। उसके दिल में फिर वैसी ही बेचैनी उठी जैसे पहले भी कई बार उठ चुकी थी। क्षोभ, परिताप, आत्मानुकंपा, अंदर ही अंदर सुलगता रहने वाला क्रोध, जिसमें प्रमिला ही हर बात की दोषी थी। साथ ही इस बात का भी भास कि प्रमिला लोगों की नजरों में अभी भी उसकी पत्नी थी। उसके नाम के साथ महेंद्र का नाम जुड़ा था। उसकी मानसिक स्थिति अजब सी हो रही थी, कुछ कुछ उस अपराधी की सी हो रही थी जो अपराध करने के बाद जरूर उस स्थान पर जाना चाहता है जहां पर उसने अपराध किया था। कभी अंतः प्रेरणावश तो कभी नाटे के दबाव में आकर उसका मन कचोटता कि वह क्यों अभी तक प्रमिला से अपना नाता तोड़ नहीं पाया, क्यों वह अधर में लटक रहा है। वास्तव में अकेलेपन की जिंदगी अभी तक उसे रास नहीं बैठी थी। दूसरी ओर गृहस्थी में अभी भी उसे जड़ता, बोझ, तरह तरह की बंदिशों का जाल नजर आता था। यूं सुषमा ने महेंद्र की स्थिति को ठीक समझा था कि वह या तो प्रमिला को वापस बुला लेगा या किसी अन्य लड़की से प्रेम करने लगेगा। व्यंग्य की ओर जाती प्रमिला की चाल में महेंद्र को वही स्थिरता नजर आई जैसी घर में कभी कभी नजर आया करती थी। संतुलित, कमनीय, तनिक बोझिल, जब प्रमिला घर का काम करती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे में आया जाया करती थी, वह गुमसुम खड़ा बराबर प्रमिला की ओर देखे जा रहा था जब पास खड़े डायरेक्टर की आवाज आई। धीरे धीरे जब पेट में बच्चा बड़ा होता जाएगा तो इसकी मानसिक स्थिति बेहतर होती जाएगी, अभी से इसका मन सुधरने लगा है। डायरेक्टर की बात महेंद्र के समझ में नहीं आई। अटपटा सा महसूस करता हुआ वह डायरेक्टर के चेहरे की ओर देखने लगा। गर्भवती स्त्रियों का पागलपन कई बार बच्चा पैदा हो जाने पर अपने आप ठीक हो जाता है। कुदरत उनकी मदद करती है और आपकी पत्नी को तो केवल दौरा सा पड़ा है, डायरेक्टर आश्वासन के स्वर में कहे जा रहा था। बच्चा पैदा होने के समय तक सारा तनाव दूर हो जाएगा, निश्चिंत रहें। महेंद्र को काटूं तो खून नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और दिल घबराने लगा। नाटे ने भी डायरेक्टर की बात सुनी थी। उसने हैरान होकर कनखियों से महेंद्र की ओर देखा, फिर मन ही मन बुदबुदाया, चलो छुट्टी हुई। पर महेंद्र का सिर घूमने लगा था। डायरेक्टर से अपनी आंतरिक स्थिति छिपाने की चेष्टा करते हुए भी वह अपनी जवान को लड़खड़ाने से रोक नहीं पाया। हाँ ठीक है, आप ठीक कहते हैं, मगर डायरेक्टर चहकने लगा था। पृष्ठ संख्या 157। आप नहीं जानते आपकी पत्नी के मन में कौन सी बात समाई है। रोज कागज के पुर्जे लिख लिख कर जमादारन को देती रहती है, लंबी लंबी फेहरिस्तें भेजती रहती है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, और सभी चीजें बच्चे के लिए, बच्चे को दूध पिलाने की बोतल, ग्राइप वाटर, साबुन, नैपकिन, जाने क्या क्या, दफ्तर में इसके पुर्जे रखे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप कुछ एक चीजें खरीद कर भेज दें, इससे इसके मन में दृढ़ता आएगी। अच्छी बात है, भेज देंगे, नाटा बोला। हमारे पास इतना फंड नहीं होता कि हम यहाँ से मुहैया करा सकें। हमारे बस का नहीं, डायरेक्टर कह रहा था, उन लिस्टों को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इनकी स्थिति पहले से बेहतर है। पर महेंद्र की कनपटियों पर हथौड़े बजने लगे थे। वह यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहता था। एक ही सवाल बार बार उसे परेशान किए जा रहा था, यह गर्भ कहाँ से ले आए? क्या यह उसी रात का दुष्परिणाम तो नहीं जब वह भावावेश में अपनी सुध-बुध खो बैठा था? यह कौन सा नया पचड़ा खड़ा हो गया है? जब कभी वह भावावेश में प्रमिला के नजदीक गया था, बुरी तरह से ठोकर खाकर लौटा था। उसे मन ही मन नाटे पर गुस्सा आया। यह मेरे पीछे नहीं पड़ा रहता तो मैं इस वक्त तक अपना कोई ना कोई रास्ता ढूंढ चुका होता। बच्चा हो जाने पर तो तलाक ले पाना नामुमकिन हो जाएगा। उसकी आंखें अभी भी प्रमिला पर लगी थीं, जो अब अलगनी के पास जा पहुंची थी, और उस पर से वह छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े खींच खींच कर उतार रही थी। सचमुच प्रमिला को गर्भ था, उसका पेट फूल रहा था, इसी कारण वह हौले हौले चल रही थी। क्रोध, आत्मभर तृष्णा और लज्जा से उसका रोम रोम दहकने लगा। फिर से मुझे गृहस्थी में बांधने के लिए प्रमिला ने जो षड्यंत्र रचा था उसमें वह कामयाब हो गई है। प्रमिला भी और प्रमिला का बाप भी, और अब उसके पैरों में जंजीरें डालकर उसे घसीट लिया जाएगा। पर इस बात का क्या प्रमाण है कि इसकी कोख में मेरा ही बच्चा है? डॉट डॉट क्या मालूम। और यह सोचकर महेंद्र का दिल कुछ कुछ संभलने लगा। कौन कैसे प्रमाणित कर सकता है कि इसकी कोख में मेरा बच्चा है? कानून की दृष्टि से ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न जाने किसके साथ मुंह काला कर आई है। डायरेक्टर अभी भी फेरिश्ते दिखाने पर इसरार कर रहा था और उन्हें फिर से दफ्तर में चलने को कह रहा था, मगर महेंद्र ने माफ़ी मांग ली और दोनों छुट्टी लेकर बाहर आ गए। पृष्ठ संख्या 158। भाभी तो बड़ी तेज निकली। अस्पताल का आंगन लांघते हुए नाटा बोला। महेंद्र चुप रहा। महेंद्र के मन में तरह तरह के भयानक अनुमान कौंध रहे थे। कहीं नाटा ही तो इस होने वाले बच्चे का बाप नहीं? यह भी प्रमिला के हाथ वाथ बड़े पकड़ा करता था। पागलपन में न जाने कहाँ कहाँ घूमती रही है, न जाने किसके साथ मुंह काला कर आई है। अरे इतना सटपटा क्यों रहा है, क्या हो गया तुझे? तुझे तो खुश होना चाहिए। महेंद्र के कान लाल हो गए, उसे झेप हुई, उसकी दृढ़ता पर चोट थी। नाटा मन ही मन हंस रहा था। वह जान गया है कि मैं बड़ा कायर और बुजदिल साबित हुआ हूँ। जिस औरत को धुतकारता रहा हूँ, एक ही रात उससे मिलने पर उसके सामने ढेर हो गया हूँ। उसे अपनी हीन स्थिति पर बड़ी कोपथ होने लगी। ना जाने कहाँ से गर्व ले आई है, महेंद्र बुदबुदाया। अरे वाह रे, नाटा बोला। अरे हमारे सामने बनता है या किसी दूसरे का बच्चा कैसे हो सकता है साले? हमारे साथ मक्कारी करता है, इसे बसाना नहीं चाहता तो बात दूसरी है, मगर हमारे सामने यह फरेब तो नहीं कर। हमें तो यह उसी रात की करामात जान पड़ती है। महेंद्र तनिक आगे आगे चले जा रहा था। रास्ते में एक पुलिया पर दोनों चुपचाप बैठ गए और सिगरेट सुलगा कर अपने विचारों को तरतीब देने लगे। मैं तुझे सच बताऊं, एक लंबा कश खींच कर महेंद्र बोला, तुम लोगों ने मुझ पर दबाव डाला तो मैं मन ही मन इस बात के लिए तैयार हो गया था कि मैं इस औरत को माफ़ कर दूंगा। इसने जो जो बेवकूफियाँ की हैं उन्हें भूल जाऊंगा और इसे वापस बुला लूंगा। हालांकि गृहस्थी में मेरी तनिक भी रुचि नहीं रह गई है। अब यह जाने कहाँ से गर्व ले आई है। स्त्री बाहर कहीं से गर्व ले आए तो उसे घर में लाकर कौन बैठा ले? मेरी गैरत मर गई है क्या? अपने घर में किसी दूसरे की औलाद को लाकर पालूं? लोग थू थू करेंगे, डूब ना मरूं इससे? सड़कों पर घूमा करती थी, मैंने खुद देखा है। नाटे ने सिर हिलाया। वाह भाई वाह, महेंद्र बाबू मान गए तुझे। और फिर अपने दोनों हाथ उठाकर महेंद्र के बाजू, उसके कंधे, उसकी पीठ दबा दबा कर टोहने लगा। यह क्या मजाक है, क्या कर रहा है तू? मैं देख रहा हूँ मेरे पास महेंद्र बैठा बोल रहा है या महेंद्र का दादा? तू तो नई रोशनी का आदमी है ना। पृष्ठ संख्या 159। महेंद्र ने नाट्य का हाथ झिटक दिया। मगर तू ठीक कहता है भोले बादशाह, नाटा कहता गया, तू किसी दूसरे का बच्चा क्यों पाले? अगर सचमुच भाभी बाहर से गर्व ले आई है तब तो हम भी नहीं कहेंगे कि इसे घर ले जाओ। आखिर मर्द की गैरत भी तो कोई चीज है। हमारे भी कुछ नहीं तो 5 बच्चे हैं, पर हैं तो अपने। कोई माई का लाल यह तो नहीं कह सकता कि अमुक बच्चा किसी दूसरे का है। अगर बाहर बच्चे पैदा किए हैं तो दिए ही हैं, अपने घर के अंदर तो किसी का बच्चा नहीं लाए। पर एक बात हमें बता भोले बादशाह, तुम में और हम में फर्क क्या? महेंद्र के लिए नाटे के साथ बैठ पाना नामुमकिन हो रहा था। वह महेंद्र की स्थिति का मजाक उड़ा रहा था, जबकि मित्र के नाते महेंद्र को उससे सहानुभूति की आशा थी।